उफ़, ये आखिरी रात बड़ी बेचैनी से कटी थी। राधिका को तैयार करने अंतराई हुई थी, आहाना भी साथ थी, बाकी सब मंदिर पहुंचने वाले थे। शादी में राधिका, माधव की फैमिली, उसकी बहनों का परिवार और शुक्ला परिवार अपने संबंधियों संग सम्मिलित होने वाले थे। बाकी सब मंदिर जाने के लिए तैयार थे। राधिका जब तैयार होकर नीचे आई तो आज फिर उसे दुल्हन के रूप में देख आशुतोष जी की आंखें छलक आईं। सालों से ये ख्वाब उनकी बूढ़ी आंखों में सचता था कि राधिका का दोबारा घर बस जाए, और उनका वो ख्वाब जिसके पूरे होने की उम्मीद तक टूट गई थी, आज हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। और उस पर भी उसकी शादी उस लड़के से होने जा रही थी जो उनकी राधिका के लिए पहली पसंद रहा था, जिसे राधिका चाहती थी। आज खुशी इतनी थी कि उनकी आंखें छलक गई थीं। उन्होंने छुपकर अपने आंसुओं को पोंछना चाहा, तब तक राधिका उनके पास पहुंच गई। उसने अपने हाथ से उनकी भीगी आंखों की नमी को साफ किया और इनकार में सर हिला दिया। आशुतोष जी नम आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा दिए, उसके सर पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा तो इस लम्हे में राधिका भी कुछ भावुक हो गई। एक बार फिर आशुतोष जी की आंखें भर आईं। ये देखकर कांडी अर्पिता अपने लहंगे को संभालते हुए उनके बीच में कूद पड़ी। क्या पापा, आप तो ऐसे इमोशनल हो रहे हैं जैसे जीजी हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रही हैं। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वो वापस यहाँ हमारे पास चली आएंगी, और कुछ महीने बाद तो आपको भी उनके साथ ही जाना है, तो ये रोना धोना बंद कीजिए। इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप आंसू बहाने लगे। खुद तो रो रहे हैं, साथ में दीदी को भी रुला रहे हैं। जानते नहीं कितनी मुश्किल से तो शादी के लिए मानी है, कहीं आपके आंसू देखकर फिर से इनकार कर दिया तो मेरे बेचारे जीजू एक बार फिर से जीजू बनते बनते रह जाएंगे, और हमें आपकी हिटलर बेटी को फिर से मनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बातूनी अर्पिता ने एक बार मुँह खोला तो बस बोलती ही चली गई। अंत में राधिका को देखते हुए अजीब सा मुँह बनाया। उसकी नौटंकी देखकर राधिका ने उसके सर पर चपत लगा दी। अर्पिता ने नाक से कोड़ते हुए नाराज़गी से उसे घूरा और अपना सर सहलाते हुए बड़बड़ाने लगी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रह गया है। एक तो इतनी बातें बनाई ताकि इनका मूड ठीक हो, पिताश्री के आंसू थम जाएं, और उल्टा मुझे ही मार पड़ गई। बहुत शैतान होती जा रही हो तुम। भगवान जाने निशान जी कैसे झेलेंगे तुम्हें सारी ज़िंदगी। राधिका ने अफसोस से सर हिलाया। उसको निशांत की चिंता करते देखकर अर्पिता तपाक से बोल पड़ी, वैसे ही जैसे आज तक आप झेलती आई हैं, और शादी करने जा रही हैं तो ये तो सोचिएगा मत कि अब आपका मुझसे पीछा छूट जाएगा। छोटी बहन हूँ आपकी, आप शादी करके अपने ससुराल जाएं या प्लेन लेकर चांद पर पहुँच जाएं, पर परेशान तो मैं आपको ऐसे ही करूँगी। अर्पिता ने बड़ी ही अदा से आगे आते बालों को पीछे झटका और खुद पर इतराने लगी। उसके बाद सुनकर राधिका ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे बहुत दुखी हो, और उसका रिएक्शन देखकर अर्पिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। माहौल अब बदल चुका था, गाड़ी भी बाहर खड़ी थी तो सब बैठकर मंदिर के लिए निकल गए। माधव ने जब सुरख चूड़ी में सजी दुल्हन बनी राधिका को देखा तो उसकी धड़कनें थम सी गईं। आज राधिका उसकी कल्पना से भी कहीं गुना ज्यादा हसीन लग रही थी। माधव अपलक उसे निहारता ही रह गया। धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ती राधिका की निगाहें भी पल भर को सामने की ओर उठीं। निगाहें माधव की निगाहों से टकराईं। सिल्वर कलर की शेरवानी जिस पर रेड थ्रेड वर्क किया हुआ था, सर पर गुलाबी साफा बांधे दूल्हे के रूप में आज माधव भी खूब जंच रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी ट्रिम कर ली थी जिससे उसका चांदी सा रंग उभर कर सामने आ रहा था। वो हल्की बियर्ड्स उसकी पर्सनालिटी पर सूट कर रही थी, और आज वो और दिनों से ज्यादा गुड लुकिंग और चार्मिंग लग रहा था। राधिका की निगाहें उस पर पड़ी तो पल भर को उस पर ही ठहर गईं। अगले ही पल उसे स्थिति का भान हुआ और उसने हड़बड़ाते हुए अपनी निगाहें झुका लीं। उसकी ये हड़बड़ाहट माधव के लबों पर मुस्कान बनकर बिखर गई। इसके बाद पूरी शादी के दौरान एक बार भी राधिका ने उसकी ओर नजरें ना उठाई, जबकि माधव सबसे नजरें बचाकर उसे निहार लेता था। वरमाला के बाद धीरे धीरे शादी की विधियां पूरी होने लगीं। कन्यादान करते हुए आशुतोष जी की आंखें छलक आई थीं तो राधिका की आंखें भी नम हो गई थीं, और जब माधव ने उसकी सूनी मांग को सिंदूर से सजाया तो आंखों में कैद आंसू उसके गालों पर बिखर गए। मंगलसूत्र पहनाने के साथ ही शादी संपन्न हो गई। नए नए विवाहित जोड़े पर खूब फूल बरसाए गए। दोनों ने जोड़ों में बड़ों का आशीर्वाद लिया, बाकी सबने भी उन्हें बधाई दी। दोनों ने साथ में भगवान के दर्शन किए, अपने नवविवाहित जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ से सब राधिका के घर पहुंचे। विदाई के वक्त सबसे ज्यादा अर्पिता ही रोई। रोकते रोकते भी आशुतोष जी की आंखें भी छलक आई थीं। अपना घर छोड़ते हुए राधिका भी खूब रोई। नए घर में नई बहू के स्वागत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। सब इस शादी से खुश थे सिवाय कविता के। वो तो बीते दिनों अनुपमा जी के मन में जहर भी भरती रही थी ताकि ये शादी ना हो, पर उसका कोई पैतरा काम ना आया। अनुपमा जी उसकी बातों में नहीं आई, उन्हें बस अपने बेटे की खुशी दिख रही थी जो वो उससे छीनना नहीं चाहती थी, और इसी बात पर उन्होंने कविता को अच्छे से डांट भी लगाई थी। उसी का असर था कि अपने मुँह से बिना कोई जहर उगले वो बेमन से ही सही पर शादी की हर रस्म में शामिल हुई थी। दिन में रस्में ही होती रहीं, जिसके दौरान राधिका को आराम करने का वक्त न मिला। रात हुई तो खाने के बाद उसे माधव के कमरे में पहुंचा दिया गया था। राधिका का दिल आज फिर घबराहट के मारे जोरों से धड़क रहा था। बीती कड़वी दर्द भरी यादों के कारण अंदर से कुछ सहमी हुई भी थी। बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में। कुछ देर तो शिखा और निशा उसके पास बैठी उसका मन बहलाती रहीं। फिर माधव ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो दोनों राधिका के चेहरे को घूंघट से ढके हंसते खिलखिलाते हुए कमरे से बाहर चली गईं। राधिका के दिल में धड़कन सी मच गई। घबराहट में कभी अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाती, कभी हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाती, तो कभी बेडशीट को कुरेदने लगती। अजीब सी घबराहट हो रही थी उसे। दरवाजा खुला और माधव ने कमरे में कदम रखा। राधिका ने अपने होठों को गोल किया और गहरी गहरी सांसें अंदर बाहर करते हुए खुद को शांत करने लगी। सिर्फ राधिका को ही घबराहट नहीं हो रही थी, माधव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जिसे दिलोजान से चाहा, आज वो उसकी पत्नी बनकर उसके रूम में उसके सामने बैठी थी। दोनों ही कुछ नर्वस नजर आ रहे थे। हालांकि दोनों की दूसरी शादी थी, पर पहली शादी का अनुभव दोनों के लिए ऐसा था कि उनके मन में अजीब सा डर समाया था। माधव के कदम राधिका के सामने आकर ठहरे। उसने गहरी सांस छोड़ी, खुद को शांत किया और राधिका के चेहरे को घूंघट के पर्दे से आजाद कर दिया। निगाहें एक बार फिर राधिका के चांद की कशिश समेटे सूरज की किरणों से चमकते चेहरे और झुकी लरस्ती पलकों पर ठहर गईं और खोए अंदाज में उसके लब फड़फड़ाए। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। राधिका के कानों में उसके रुमानियत भरे शब्द पड़े तो उसने हौले से पलकें उठाकर उसे देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से उलझी और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। माधव ने अपनी हथेली राधिका के चेहरे की ओर बढ़ाई, पर फिर कुछ सोचते हुए अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। उसके लब हिले, शायद कुछ कहना चाहता था पर कहते कहते रुक गया। राधिका के पास बैठने को हुआ पर कुछ सोचकर ठहर गया। राधिका खामोश निगाहों से बस उसे ही देख रही थी। माधव ने अब अपने कदम पीछे हटाने चाहे। माधव को झिझकते और कतराते देखकर राधिका ने उसकी हथेली को अपनी हथेली से थाम लिया। माधव की निगाहें राधिका की ओर उठ गई।
माधव जी, अगर आप मेरे मतलब मैं पति पत्नी वाला रिश्ता वो मैं कहना चाह रही थी कि मुझे एतराज नहीं है। वैसे तो आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, पर मैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। आपको मेरे कारण अपने कदम पीछे हटाने या अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं है। राधिका की जुबान शुरू में लड़खड़ाई, घबराहट उस पर हावी होने लगी, पर फिर राधिका ने खुद को संभाल लिया। माधव ने शांत भाव के साथ उसकी पूरी बात सुनी, फिर चेहरे पर संजीदा भाव लाते हुए सवाल किया, और अगर मैं कहूँ कि अभी मैं ऐसा नहीं चाहता तो? हाँ, राधिका ने चौंकते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। उसको यूं उलझा देखकर माधव ने अपनी बात को जरा खोलकर उसके सामने रख दिया। पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आप तो तैयार हैं, पर अगर मैं अभी आपके साथ उस तरह का रिश्ता नहीं बनाना चाहता है तो क्या आपको बुरा लगेगा? राधिका को अब पूरी बात समझ आई और उसने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए इनकार में सर हिला दिया।
नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
राधिका, एक सवाल पूछूं आपसे?
जी।
राधिका ने तुरंत ही सर हिलाया और आंखें बड़ी बड़ी करके प्रश्नसूचक दृष्टि से माधव के गंभीर चेहरे को देखने लगी। आपको क्या लगता है मैंने आपसे शादी क्यों की है? माधव के सवाल पर राधिका कुछ उलझी। मुझे कैसे पता होगा, ये तो आपको पता होगा। राधिका के इस जवाब को सुनकर माधव ने ठंडी आह भरी। गंभीर भाव और गंभीर हुए और वो बारी बारी राधिका की उन बड़ी बड़ी आंखों में झांकने लगा। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि मैंने बस अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसे शादी की है? माधव का ये सवाल सुनकर राधिका की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। अगले ही पल उसने हड़बड़ाते हुए इनकार में सर हिला दिया।
नहीं, आप तो पसंद करते हैं ना मुझे, इसलिए आपने मुझसे शादी की। पर अब तो हमारी शादी हो गई है तो आपका हक है मुझ पर। अगर आप पति होने का हक जताते हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं रोकूंगी नहीं आपको। आखिरी के शब्द बोलते हुए राधिका ने अपनी नजरों को झुका लिया। माधव ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से थामे उसके चेहरे को अपने सामने कर लिया।
क्यों, क्यों नहीं रोकेंगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पति हूँ आपका और शादी का रिश्ता मुझे आप पर अधिकार देता है।
राधिका ने हौले से अपनी पलकें उठाई, नजरें सीधे माधव की नजरों से जा टकराई जो उससे कुछ पूछ रही थी।
ये बात भी है, पर मैं अपनी पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती। आप मर्दों से इनकार बर्दाश्त नहीं होता और मैं हमारे रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई थी, शायद अतीत का कोई दर्द भरा वाकया फिर याद आ गया था। उसका जवाब सुनकर माधव के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे।
अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अगर आप मुझे अपने करीब आने से रोकती हैं तो मैं भी आपके साथ जबरदस्ती करूंगा जैसे आपके पहले पति ने किया था?
इसके बाद वो ठहरा, निगाहें भर राधिका को देखा और अजीब सी उदासी और मायूसी अपने शब्दों में समेट ली।
आप मुझे अपने पहले पति से कंपेयर कर रही हैं राधिका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ना खराब हो, और मुझे आपकी नज़दीकियों से कोई एतराज़ भी नहीं। राधिका बुरी तरह हड़बड़ा गई, चेहरे का रंग भय से सफ़ेद पड़ गया, और माधव अब भी गंभीर निगाहों से उसे ही देख रहा था। क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मुझे आपकी नज़दीकियों से कोई एतराज़ नहीं। पर आप क्या सिर्फ इसलिए खुद को मुझे सौंपने को तैयार हैं क्योंकि मैं आपका पति हूँ? राधिका पहले तो आँखें बड़ी बड़ी किए उसे देखती रही, फिर नज़रें झुकाते हुए बोली, नहीं, मोहब्बत भी तो है आप मेरे। विश्वास है आपको अपनी मोहब्बत पर? माधव की हथेली ने राधिका के गाल को स्पर्श किया। राधिका के लब हौले से फड़फड़ाए। है, पर डर लगता है मुझे। आगे अगले भाग में, तब तक आप बताइए कि राधिका को किस बात से डर लग रहा है, और मैं कहाँ तक उन दोनों के दिलों की कश्मकश को शब्दों में उतारने में कामयाब रही।